समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
नमस्कार, हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 4:30 बज चुके हैं और ये समय है आपके अपने न्यूज मैगजीन कार्यक्रम परिक्रमा का। श्रोताओं, आधे घंटे के इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार होंगे, चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे कि क्या कुछ खास है उनके पास। इसके अलावा खेल गतिविधियों पर भी रहेगी हमारी नजर और हम करेंगे उन विशिष्ट व्यक्तियों को भी याद जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन। तो परिक्रमा के इस अंक के साथ मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट जया भारती और मेरे साथ है मेरे को होस्ट अभिषेक मुखोपाध्याय। अभिषेक, आपको भी मेरा नमस्कार।
Hello Jaya, hello and a very warm welcome to all our listeners tuned into Parikrama 100.1 FM Gold. I am Abhishek Mukhopadhyay and with me today is my co-host Jaya Bharti. Well listeners, here are three amazing facts about a legend. Firstly, he is the only person to compose national anthems of two countries, India's Jana Gana Mana and Bangladesh's Amar Sonar Bangla. In addition, the national anthem of Sri Lanka was greatly inspired by his work. Yes, and secondly, in 1913, he became the first non-European to win a Nobel Prize in Literature for his deeply spiritual and sensitive collection of poems titled Gitanjali, Song Offerings.
Tor dag shune kyo na ashe tobe akla cholo re jodi tor dag shune kyo na ashe tobe akla cholo re tobe akla cholo akla cholo akla cholo re tobe akla cholo akla cholo akla cholo.
Yes, and thirdly, he was a late-blooming artist. He took up painting and drawing at the age of 60. He has produced 2,000 to 3,000 artworks, thereby showcasing an incredible creative evolution in his later life. And I'm also going to share one bonus fact about him with the listeners, Jaya. He was a huge proponent of education and used his Nobel Prize money to build a unique, nature-focused Vishwa Bharati University in Shantiniketan.
Ami chini go chini tomare o go bideshini. Ami chini go chini tomare o go bideshini. Tumi thako sindhu pare, tumi thako sindhu pare.
Yes, well, he's none other but the towering figure of Bengal Renaissance whose work redefined literature, music and art. He's Rabindranath Tagore and we are going to speak about him later in our program. Yes, sir, but before that, I think Jaya is going to say something.
Yes, Abhishek, श्रोताओं को बता देना चाहूंगी कि इसी तरह के कई विशिष्ट व्यक्तियों की आज हम बात करेंगे, उनके कई गीत और संगीत भी होंगे हमारे कार्यक्रम के आखिरी सेगमेंट में, तो अंत तक बने रहिएगा।
Yes, sir, but first of all, we begin with the news headlines first.
बिल्कुल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर सशस्त्र बलों के शौर्य को नमन किया। प्रधानमंत्री ने आतंकवाद और इसे बढ़ावा देने वाले तंत्र को नष्ट करने की राष्ट्र की प्रतिबद्धता को दोहराया।
बिहार चीफ मिनिस्टर सम्राट चौधरी एक्सपेंड्स हिज कैबिनेट, 32 मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग नीतीश कुमार सन टेक ओथ एज न्यू मिनिस्टर्स।
तमिलनाडु और केरला में सरकार गठन के लिए सघन वार्ताओं का दौर जारी।
Government launches nationwide annual health checkup initiative for workers aged 40 years and above.
और IPL क्रिकेट में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से।
Yes, and now listeners, it's time for a segment Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at the national or the global level. And today we will talk about Operation Sindoor Remembrance Day. Well, we are talking about a very special broadcast, Operation Sindoor, 1 year of resolve. Today, we revisit one of the most significant military operations in recent Indian history, Operation Sindoor, launched by India on the night of May 6th and 7th, 2025, in response to the deadly terror attack in Pahalgam. a story of courage, strategy, precision, and the nation's resolve against terrorism. Yes, and 1 year ago today, India carried out a carefully planned military response targeting terror infrastructure across the border in Pakistan and Pakistan-occupied Kashmir. The operation came after the brutal terrorist attack in Pahalgam on April 22, 2025, in which innocent civilians lost their lives. The attack shocked the country and reignited national anger against cross-border terrorism.
बिल्कुल अभिषेक, और इसके बाद के दिनों में हर किसी के मन में बस एक ही सवाल था, भारत इसका जवाब कैसे देगा? इसका जवाब 6 और 7 मई की रात को मिला। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया। भारतीय अधिकारियों के अनुसार इस मिशन का मकसद आतंकी ठिकानों को निशाना बनाना था, साथ ही आम नागरिकों को नुकसान से बचाना और हालात को बेवजह बिगड़ने से रोकना भी था। आज रात जो हम इन बातों पर चर्चा करेंगे कि ये ऑपरेशन क्यों शुरू किया गया, इसकी योजना कैसे बनाई गई और इसे कैसे अंजाम दिया गया, भारत के सशस्त्र बलों की भूमिका, दुनिया भर की प्रतिक्रिया और एक साल बाद भी ऑपरेशन सिंदूर भारत की सुरक्षा नीति को किस तरह प्रभावित कर रहा है।
Yes, and to understand Operation Sindoor, we must first revisit the tragedy that triggered it on April 22, 2025. Terrorists attacked tourists in Pahalgam in Jammu and Kashmir. Families on vacation suddenly found themselves caught in violence and chaos. The attack resulted in multiple civilian deaths and injuries. The incident drew condemnation from across India and around the world. Political leaders, civil society groups and international observers described it as a barbaric act of terrorism. Across the nation, candlelight marches were held. Citizens demanded justice, security agencies intensified investigations. And behind closed doors, India's defense and intelligence establishment began preparing a response.
और अधिकारियों ने बाद में बताया कि सरकार का मकसद साफ था, ऐसे हमलों को अंजाम देने वाले, उनकी योजना बनाने वाले और उन्हें संभव बनाने वाले आतंकी ढांचे को इसके नतीजे भुगतने ही होंगे। कुछ ही दिनों के भीतर सैन्य योजनाकारों, खुफिया विश्लेषकों और रणनीतिक विशेषज्ञों ने कथित तौर पर विस्तृत मूल्यांकन करना शुरू कर दिया। सैटेलाइट तस्वीरों की जांच की गई, खुफिया नेटवर्क को सक्रिय बनाया गया, संदिग्ध आतंकी शिविरों और प्रशिक्षण केंद्रों की पहचान की गई। यह तैयारी आखिरकार ऑपरेशन सिंदूर का आधार बनी।
Military analysts have since described Operation Sindoor as a highly coordinated, multidimensional operation. Unlike conventional military engagements, the operation reportedly combined intelligence gathering, cyber coordination, aerial surveillance, precision targeting, and strategic communication. An Indian Armed Forces carried out what officials called a microscopic scan of the terror landscape across the border. And according to official statements, numerous terror camps, launch pads and training facilities linked to extremist organizations were identified.
और इस मिशन का उद्देश्य एकदम स्पष्ट था, आतंकी ढांचे को खत्म करना, भविष्य के हमलों को रोकना, आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई करने की भारत की इच्छा शक्ति को प्रदर्शित करना और सबसे खास बात, आम नागरिकों को नुकसान से बचाने के लिए रणनीतिक संयम बनाए रखना। रक्षा विशेषज्ञों ने बाद में यह टिप्पणी की कि यह ऑपरेशन भारत के विकसित होते सैन्य सिद्धांत को दर्शाता है, एक ऐसा सिद्धांत जो गति, खुफिया जानकारी, सटीकता और नपी तुली सैन्य शक्ति का मेल है।
Yes, and then came the night of May 6th and 7th, 2025. Across military command centers, activity intensified. Communication systems were activated. Surveillance feeds were monitored continuously. and then Operation Sindoor began. According to Indian officials, precision strikes targeted 9 major terror infrastructures in Pakistan and Pakistan-occupied Kashmir. The operation reportedly involved coordinated action from all 3 branches of India's armed forces, Indian Army, the Indian Air Force and the Indian Navy. Military experts later highlighted the seamless coordination as one of the operation's defining features. Precision-guided weapons were reportedly used to strike selected targets. Officials stated that extreme care was taken to avoid civilian casualties and non-terror targets. India maintained that the operation was not directed at civilians or ordinary Pakistani military facilities unrelated to terrorism, but specifically at terror infrastructure. The strikes, according to government statements, inflicted significant damage on terror camps and operation networks. Reports also suggested that several high-profile terrorists were eliminated during the operation.
हाँ, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ सैन्य कार्रवाई तक ही सीमित नहीं था. इसका एक मकसद संदेश देना भी था. भारत एक साफ संदेश देना चाहता था कि सीमा पार से प्रायोजित या समर्थित आतंकवाद का अब बिना जवाब दिए नहीं छोड़ा जाएगा. फिर भी साथ ही साथ भारतीय अधिकारियों ने बार बार संयम बरतने पर जोर दिया. इस ऑपरेशन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पेश किया गया और बताया गया कि यह कितना लक्षित, सीमित दायरे वाला और विशेष रूप से आतंकवाद पर केंद्रित था. साथ ही बड़े संघर्षों से बचने के लिए इसे सावधानी पूर्वक ही नियोजित किया गया था.
Yes, and strategic analysts observed that this balance between force and restraint became central to India's diplomatic outreach after the operation. India briefed several global powers and international organizations about the nature of the strikes and the intelligence assessments behind them. Many countries expressed concern over terrorism in the region while also urging restraint from both sides. For New Delhi, the operation became an example of what policymakers described as a zero-tolerance approach to terrorism.
Bilkul.
Yes, and another major talking point after Operation Sindoor was India's growing technological and defense capabilities. Experts pointed to the increasing use of advanced surveillance systems, precision-guided weaponry, indigenous defense platforms, real-time intelligence integration, electronic warfare systems, and coordinated battlefield communication networks.
और रक्षा विश्लेषकों ने कहा कि इस ऑपरेशन से यह पता चला कि आधुनिक युद्ध अब सिर्फ सैनिकों की संख्या पर नहीं बल्कि डेटा, गति और तकनीकी एकीकरण पर भी ज्यादा से ज्यादा निर्भर होता जा रहा है. इस ऑपरेशन ने स्वदेशी रक्षा निर्माण और उन्नत सैन्य प्रणालियों पर भारत के बढ़ते भरोसे को भी उजागर किया. कई जानकारों ने यह भी कहा कि पिछले एक दशक में भारत के रक्षा आधुनिकीकरण के प्रयासों ने इस तरह के सटीक ऑपरेशनों को संभव बनाने में अहम भूमिका निभाई है.
Yes, and perhaps one of the strongest messages from Operation Sindoor was a remarkable coordination among India's 3 defense services. The Indian Army, Air Force and Navy reportedly operated in close synchronization throughout the mission. Military strategists often describe such integration as joint operations capability, where all services work together towards a common strategic objective. Operation Sindoor became one of the clearest examples of this capability in action.
और विशेषज्ञों ने यह बात भी माना है कि इस स्तर के तालमेल के लिए वर्षों की योजना, संचार सुधार, संयुक्त प्रशिक्षण और एकीकृत कमान संरचनाओं की आवश्यकता होती है. इस ऑपरेशन ने न केवल मारक क्षमता बल्कि संगठनात्मक दक्षता को भी प्रदर्शित किया और कई भारतीयों के लिए यह सशस्त्र बलों की पेशेवरता और तत्परता का प्रतीक बन गया.
एंड फॉलोइंग द ऑपरेशन, टेंशंस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान रोज शार्पली. Security preparedness increased across the region. International leaders urged de-escalation. Diplomatic channels became highly active. However, Jaya, Indian officials maintained that the operation had achieved its intended objectives. According to statements released afterward, the strike significantly disrupted terror infrastructure and sent a strong deterrent message. Analysts observed that Pakistan eventually moved towards ceasefire understandings amid rising pressure and escalating tensions, and yes.
जी अभिषेक, और इस तरह से भारत में ऑपरेशन सिंदूर जल्द ही राष्ट्रीय चर्चा का एक प्रमुख विषय बन गया और यह प्रतीक बना राष्ट्रीय संकल्प का, सैन्य क्षमता का, रणनीतिक स्पष्टता का और आतंकवाद के विरुद्ध एक दृढ़ रुख का।
Absolutely, and behind every military operation are human stories, stories of soldiers standing alert through the night, pilots preparing for dangerous missions, intelligence officers analyzing information for days without pause, families waiting anxiously for news, and most importantly, the memory of civilians whose lives were lost in the Pahalgam attack.
और आज जब पूरा देश ऑपरेशन सिंदूर को याद कर रहा है तो पूरे देश में एक ही संदेश गूंज रहा है कि आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई दृढ़, केंद्रित और अडिग है। और यह इस बात को भी याद दिलाता है कि शांति और सुरक्षा के लिए अक्सर साहस, अनुशासन और एकता की आवश्यकता होती है। और अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का कि उनके पास आज क्या कुछ खास है। तो सबसे पहले चलते हैं उत्तर प्रदेश, जहां जनगणना 2027 के पहले चरण के अंतर्गत 22 मई से मकानों की गणना शुरू होगी जो 22 जून तक चलेगी। इससे पहले आज से स्वगणना की सुविधा शुरू हो गई है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हमारी जनगणना हमारा विकास की भावना का आह्वान करते हुए कहा कि जनगणना केवल जनसंख्या की गणना नहीं बल्कि समग्र, समावेशी और सुनियोजित विकास का सशक्त आधार है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज से 21 मई तक स्वगणना के तहत नागरिक स्वयं अपनी जानकारी दर्ज कर सकेंगे। राज्य की जनगणना निदेशक और मुख्य प्रधान जनगणना अधिकारी शीतल वर्मा ने बताया कि नागरिकों को वेबसाइट पर जाकर अपने राज्य को चुनना होगा और फिर परिवार के मुखिया के नाम, मोबाइल नंबर या ईमेल के जरिए लॉगिन कर जानकारी भरनी होगी। उन्होंने लोगों से स्वगणना में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की है।
प्रथम फेज हमारा 22 मई से 20 जून के बीच होगा उत्तर प्रदेश में, और उससे पहले 15 दिन स्वगणना की विंडो सभी लोगों के पास है कि वो खुद पोर्टल पर जाकर अपने सभी प्रश्नों का आंसर रिकॉर्ड कर सके। तो अधिक से अधिक लोग स्वगणना करें, क्योंकि वो बहुत बार ये शिकायत करते हैं कि एन्यूमरेटर ने गलत डेटा रिकॉर्ड कर दिया, और आपकी जो भी स्वगणना आईडी है जब आपका प्रगणक आपके घर आता है उसके साथ साझा करें।
मुख्य प्रधान जनगणना अधिकारी ने बताया कि स्वगणना पर 11 अंकों का एक कोड प्राप्त होगा जिसे प्रगणक के घर आने पर देना होगा, जिससे जानकारी का सत्यापन होगा। परिक्रमा के लिए ओम अवस्थी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
Training program for Census 2027 begins in Leh. Administration strengthens preparations for house listing census phase. And 3-day census training concludes today in Ladakh ahead of the nationwide exercise.
In a significant step towards the successful implementation of Census 2027, the District Administration of Leh on Monday commenced a 3-day intensive training program for field trainers and technical assistants under the House Listing and House Census (HLO) phase of the upcoming National Census exercise. The program was organized by the Office of the Principal Census Officer, Deputy Commissioner Leh, in collaboration with the Directorate of Census Operations, Jammu and Kashmir and Ladakh. The program aims to strengthen field level preparedness for the house listing and house census HLO phase of the nationwide exercise. Experts believe the upcoming census assumes added significance for Ladakh, particularly after it became a union territory in 2019 following the reorganization of the erstwhile state of Jammu and Kashmir. Updated demographic, housing and socio-economic data are expected to assist policymakers in assessing infrastructure's requirements and developmental priorities in the region. Officials said the house listing and house census forms the foundation of the national census process and plays a vital role in policy making and implementation of welfare schemes. In a region like Ladakh, where remote habitations and difficult terrain pose logistical challenges, trained manpower and proper coordination are considered essential for ensuring reliable data collection. The training program concluded today is part of broader efforts underway to ensure smooth and efficient conduct of Census 2027 in the Union Territory. For परिक्रमा, दिस इज रिक्ज़न अंगमो फ्रॉम लेह लद्दाख।
श्रोताओं, अब लह से आपको गोवा की तरफ लिए चलते हैं, जहां शिक्षा मंत्रालय प्रमुख औद्योगिक गलियारों से जुड़े 5 यूनिवर्सिटी टाउनशिप विकसित करके भारत की उच्च शिक्षा में एक परिवर्तनकारी बदलाव की परिकल्पना कर रहा है। 6 मई 2026 को एनआईटी गोवा ने एक प्रस्ताव मसौदा तैयार करने के लिए पहली हितधारक परामर्श बैठक की मेजबानी की है। इस बारे में अधिक जानकारी के लिए सुनते हैं हमारे संवाददाता की रिपोर्ट।
Unlike isolated standalone campuses, these townships co-locate multiple universities with industry, R&D clusters and shared infrastructure. Drawing inspiration from the global benchmarks like Singapore's One North and Japan's Tsukuba Science City, the model seeks to enhance employability and innovation. NIT Goa Director Professor O.R. Jaiswal emphasized that these towns shape entire lifestyles revolving around students and knowledge industries. During the three-hour discussion, experts from the National Center for Polar and Ocean Research, NCPOR, National Institute of Ocean and BITS Pilani proposed integrating all local colleges into single knowledge sharing hub. Key initiatives discussed include synchronizing academic calendars between IIT, NIT and BITS Goa, sharing high-end lab equipments and launching campus-to-career programs with Varna-based industries. By leveraging Goa's compact size and high connectivity, the initiative aims to move away from institutional silos and toward a professionally managed, industry-aligned future for Indian education. With Nikhil Upadhyay's report from Akashwani News Panaji for Parikrama Jigyasa Pandey.
और अब बात खेल की। लखनऊ में आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। बेंगलुरु अंक तालिका में तीसरे और लखनऊ अंतिम पायदान पर है।
And on to some business news. Benchmark domestic equity indices staged a lackluster close today, remaining largely unchanged amid a choppy trading session. The Sensex dropped 114 points to close at 77,845, while the Nifty dipped 4 points to settle at 24,327. And for more updates about the market activities, tune into Akashwani's bilingual program Market Mantra at 6:30 p.m. this evening.
और अब हम बात करेंगे महान स्वतंत्रता सेनानियों की और बात करेंगे उन विशिष्ट व्यक्तियों की जिनकी आज है पुण्यतिथि जयंती या जन्मदिन।
गगने गरजे मेघ घन वर्षा कुले एका बसे आछि नाही भरसा राशि राशि भरा भरा धान काटा हलो सारा।
Today we remember Gurudev Rabindranath Tagore, who was born on the 7th of May 1861 in Kolkata. Rabindranath Tagore was the youngest son of Debendranath Tagore, a leader of the Brahmo Samaj.
Rabindranath exposed British rule by chronicling all adversities with British imperialism through poetry and literary works. Tagore wanted the struggle against British rule to be germinated from the grassroots of society rather than being confined to an elite section.
During the partition of Bengal in 1905, Rabindranath provided active leadership to the Swadeshi movement, advocating boycott of British goods and promotion of indigenous products.
Rabindranath Tagore wrote the song Banglar Mati, Banglar Jol, to unite the Bengali population. He also wrote the song Amar Shonar Bangla, which was later adopted as the national anthem of Bangladesh.
Gurudev is also the writer of our national anthem, Janaganamana, which he wrote in 1911 to be sung at the Congress session in Kolkata.
Rabindranath Tagore brought glory to the country when he became the first Indian to win the Nobel Prize for our country in 1913 for his extraordinary work, Gitanjali.
In 1915, he was awarded a knighthood by the British Crown, which he denounced after the Jallianwala Bagh massacre as a sign of protest. In his repudiation letter to Viceroy Lord Chelmsford, Rabindranath wrote,
"The time has come when badges of honour make our shame glaring in the incongruous context of humiliation, and I, for my part, wish to stand, shorn of all special distinctions, by the side of those of my countrymen who, for their so-called insignificance, are liable to suffer degradation not fit for human beings."
The basic thrust of Tagore's approach to India's nationhood and freedom from British rule was his emphasis on social reform and the removal of gross inequities that India's society suffered from. Reforming education, therefore, became the cornerstone of his mission for society and nation building. To this end, Gurudev Rabindranath established the Vishwabharati University at Shantiniketan in 1921. The noble soul breathed his last on the 7th of August 1941 at Kolkata, pays tribute to the great noble soul. We also remember the freedom fighter Alluri Sitarama Raju. Alluri Sitarama Raju was born in 1897 in a village called Mogallu near Bhimavaram in Andhra Pradesh. He was inspired by the revolutionaries of Bengal to fight against the British government.
Alluri is remembered for leading the Rampa Rebellion against the British in the early 1920s. The Madras Forest Act 1882 disrupted the lives of the tribal people. It barred them from engaging in their traditional agricultural activities. Alluri organized the tribal people of Visakhapatnam and East Godavari districts to revolt against the oppressive British regime.
Between the years 1922 and 1924, Alluri and his men stormed several police stations and killed many British officers and stole arms and ammunition for battle. The British were finally able to capture him. The barbaric British police tied him to a tree and shot him on the 7th of May, 1924.
The people honored him with the title Manyam Virudu, which translates to Hero of the Jungles. 1986, India Post released a commemorative stamp in honor of Alluri Sitarama Raju. Pays tribute to the brave son of the soil.
इसके साथ ही हम याद कर रहे हैं हिंदी सिनेमा के फनकार प्रेम धवन को. आज उनकी पुण्यतिथि है और जिन्हें विशेष रूप से उनके कालजयी देशभक्ति गीतों के लिए याद किया जाता है.
है मेरे बिछड़े चमन खुद को बिल्कुल दोबारा मेरी
दिलचस्प बात यह है कि प्रेम धवन ने जहां एक तरफ जोशीले देशभक्ति गीत लिखे वहीं दूसरी तरफ चंदा मामा दूर के जैसी कोमल और प्यारी लोरी भी रची और आज यह हर घर का हिस्सा है और आज भी बच्चों को सुलाने के लिए इस लोरी को प्रसिद्ध माना जाता है. 1960 की फिल्म हम हिंदुस्तानी का बेहद लोकप्रिय गीत भी सुनते हैं.
छोड़ो कल की बातें कल की बात पुरानी नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी हम हिंदुस्तान.
भारत सरकार ने उन्हें 1970 में पद्मश्री से सम्मानित किया. 1971 में फिल्म नानक दुखिया सब संसार के लिए सर्वश्रेष्ठ गीत का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिला.
Yes, and we are also remembering Johannes Brahms, who was born on this day in 1833. He was a German composer, virtuoso, pianist and conductor of the mid-romantic period. His music is noted for its rhythmic vitality and freer treatment of dissonance, often set within studied yet expressive contrapuntal textures. Let's listen into a hit composition of his.
और आज ही पुण्यतिथि है भारतीय कला सिनेमा के दिग्गज संगीतकार और पद्मश्री अलंकृत वनराज भाटिया की, जिन्हें पश्चिमी शास्त्रीय संगीत और भारतीय संगीत के अनूठे मिश्रण के लिए जाना जाता है. प्रीति सागर द्वारा गाया गया यह गीत उनके करियर का सबसे सफल गीत माना जाता है. और किशोर कुमार और आशा भोसले द्वारा गाया गया यह गीत मुख्य धारा के करीब संगीत का एक उदाहरण है.
दिल जिंदा रखने के लिए कोई दर्द जरूरी होता है, दर्द भरी.
एक और इनका गीत सुनते हैं आरती अंकलीकर टिकेकर द्वारा गाया गया, जो ठुमरी शैली का एक उत्कृष्ट उदाहरण है.
हुजूर इतना अगर हम पर करम करते तो अच्छा था, हुजूर इतना अगर हम.
उन्होंने करीब 6000 से अधिक विज्ञापनों के लिए भी संगीत दिया. गानों के अलावा उनका भारत एक खोज का शीर्षक संगीत और तमस का बैकग्राउंड स्कोर भारतीय टेलीविजन इतिहास के सबसे प्रभावशाली कार्यों में गिना जाता है.
So with that, it's a wrap on this edition of Parikrama. So from Jaya Bharti and me, Abhishek Mukhopadhyay, thank you so much for being with us. So till the next time, bye and namaskar.